मोक्षमार्ग सिनीतारम भीतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अब वैयावृत्त्य भेद प्रतिपादनार्थमाह वैयावृत्ति के भेद को प्रतिपादित करने के लिए कहते हैं कि इनकी वैयावृत्ति होती है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गणकुल संघ साधु मनोज्ञान वैयावृत्ति 10 भेदों में विभक्त है, तो इसको अपन पढ़ चुके थे कि आचार्य कौन है सबको याद है, फिर उपाध्याय कौन है ये भी सबको पता है, तपस्वी कौन है जो तपस्या करते हैं ज्यादा उपवास वगैरह करते हैं, शैक्ष यानी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, ग्लान यानी जो बीमार है, फिर गण जो है वो बूढ़े साधु लोगों का समूह है, और कुल जो है वो एक दीक्षाचार्य के शिष्यों का नाम है, और साधु शब्द जो है वो पुराने दीक्षित साधु को कहते हैं, और संघ जो है वो 4 प्रकार का संघ होता है, श्रवण निवह चतुर्वर्ण श्रवण निवह संघ, ऋषि मुनि यति अनगार ये संघ है। फिर संघ के दूसरे भेद भी हैं, मुनि आरिका श्रावक श्राविका शुल्लक शुल्लिका, फिर मनोज्ञ वो है जो लोकप्रिय हैं, उनके ऊपर व्याधि परिश अथवा अंतरंग में कोई ऐसे भावों में कलुषता आ जाए, मिथ्यात्वादिक का उपद्रव हो जाए, तो अपने शरीर की चेष्टा से अथवा अन्य किसी पदार्थ से उसका प्रतिकार करना वैयावृत्त है, और वैयावृत्त करने से अपनी समाधि होती है और ग्लानि नष्ट होती है और सधर्मा जनों के प्रति वात्सल्य उत्पन्न होता है। प्रवचन वात्सल्य का अर्थ यहाँ पर सधर्मा जनों के प्रति वात्सल्य, ये प्रकट होते हैं। स्वाध्याय विकल्प विज्ञानार्थमाह, स्वाध्याय का भेद, स्वाध्याय के जो भेद हैं 5 भेद उनका ज्ञान कराने के लिए आचार्य कहते हैं। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशः निर्वध्य ग्रंथार्थ उभय प्रदानम वाचना, निर्दोष ग्रंथ अर्थ और उभय प्रदान करना वाचना है, संशय उच्छेदाय निश्चित बलाधानाय वा पर्यनुयोग परानुयोग पृच्छना, संशय को दूर करने के लिए और जो जाना हुआ है उसको और बल प्रदान करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पृच्छना कहते हैं। अधिगतार्थस्य मनसाध्यासोनुप्रेक्षा, जाने हुए पदार्थ का मन के द्वारा अध्यास करना, उसको बार बार पुष्ट करना वो अनुप्रेक्षा है। घोष शुद्धम परिवर्तन आमनाय, उच्चारण की शुद्धि के साथ पाठ करना आमनाय स्वाध्याय है। धर्म कथाध्यनुष्ठानम धर्मोपदेश है, धर्म कथा अधिक का अनुष्ठान रखना धर्मोपदेश है। राम कथा, मैना सुंदरी कथा, पार्श्वनाथ कथा, ऐसे कथाओं का आयोजन करना धर्मोपदेश स्वाध्याय है। सहेष पंचविध स्वाध्याय किमर्थम, ये 5 स्वाध्याय क्यों किया जाता है, तो बोले कि प्रज्ञातिशय प्रशस्ताध्यवसाय परम संवेगस तपो वृद्धि रतिचार विशुद्धि रित्यवाद्यर्थ, अपने ज्ञान में वृद्धि होती है कथा करने से, और क्या होता है प्रशस्ताध्यवसाय शुभोपयोग होता है, और क्या होता है, परम संवेग होता है, धर्म और धर्म फल के प्रति अत्यधिक प्रीति उत्पन्न होती है, और संसार भ्रमण से भय भी उत्पन्न होता है कथाओं से, और तपोवृद्धि, तप में वृद्धि होती है, तपश्चरण में वृद्धि होती है, और अतिचार विशुद्धि, अपने को जो अतिचार लग रहा है इन कथाओं के माध्यम से अपने अतिचारों का शोधन होता है। धर्मोपदेश से आपने 1 घंटे में या फिर एक निर्धारित काल के भीतर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करके आगम में जो आई हुई कथा थी उसको अच्छी तरह से सुनाया, तो उनके अंदर जो निर्मलता आई उससे अपने को जो अतिचार लगे हुए हैं उनका प्रायश्चित भी हो जाता है। धर्म प्रभावना से बड़ा भारी प्रायश्चित होता है। इत्येवम आदि ऐसे ऐसे और भी लाभ होते हैं स्वाध्याय से, धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय से और भी लाभ। ये तो 5 स्वाध्यायों के लाभ बता रहे हैं यहां पर। फिर व्युत्सर्ग भेद निर्जनानामृतमाह, अब व्युत्सर्ग तप जो है जिसमें परिग्रह का त्याग करते हैं उसके भेद बताते हुए आचार्य कहते हैं बाह्याभ्यंतरोपद्यो व्युत्सर्ग, ऐसा लगाना होगा कि व्युत्सर्ग जो होता है किसका त्याग किसका करते हैं, विसर्जनम व्युत्सर्गस्य त्यागः, विसर्ग का त्याग है किसका, तो बोलते बाह्याभ्यंतरोपद्यो षष्टिका द्विवचन। बाह्योपधि और आभ्यंतरोपधि दोनों का अनुपात, वास्तु धन धान्यादि बाह्योपदी अनुपात, यानी जन्म से गर्भ से अपने ने जो स्वीकार नहीं की थी ऐसी जो परिग्रह भूत वस्तु है जैसे वास्तु है, धन है, धान्य आदि है, ये बाह्योपदी है, बाह्य परिग्रह है। फिर क्रोधाधिर आत्मभावो भ्यंतरोपदी, और क्रोधाधिक जो अंतरंग भाव है वो अंतरंग परिग्रह। तो कायत्यागश नियत कालो, और कायोत्सर्ग करना नियत काल तक, वह भी यावत जीवन वा अथवा जीवन भर के लिए, अंत में अगर समय निकट आ गया तो जीवन भर का कायोत्सर्ग कर लिया। वो अभ्यंतर उपधि त्याग इत्युच्यते, अंतरंग उपधि का त्याग ऐसा कहा जाता है। आचार्य शिवसागर मुनिराज जब वहां से बाहर से लौट करके आए और कायोत्सर्ग में खड़े हुए तो कायोत्सर्ग में खड़े खड़े ही उनका देवलोक हो गया, तो वित्सर्ग तप के साथ उनका समाधि मरण हुआ। भले ही वो आकस्मिक था लेकिन वो जिस अवस्था में थे वो सर्वोत्कृष्ट अवस्था थी। उत्थित उत्थित कायोत्सर्ग, शरीर भी खड़ा है आत्मा भी खड़ी है, तो उसको उत्थित उत्थित कायोत्सर्ग कहते हैं। कायोत्सर्ग के वैसे 2 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, उत्थित और उपविष्ट, ऐसे 2 भेद वो बाह्य शरीर की अपेक्षा से। उपविष्ट का अर्थ बैठे हुए और उत्थित का अर्थ खड़े हुए उठे हुए, पर फिर इनके 2 भेद होते हैं, उत्थित उत्थित, उत्थित उपविष्ट, बाहर से भी खड़े हैं अंदर से भी खड़े हैं, उत्थित उत्थित। उत्थित उपविष्ट बाहर से खड़े हैं लेकिन अंदर से आर्द्र आर्द्र ध्यान हो रहा है, तो बैठे हुए हैं। फिर उपविष्ट के भी 2 भेद है, उपविष्ट उत्थित बैठे हैं अंदर, बाहर से बैठे हैं लेकिन अंदर से खड़े हैं। फिर उत्थित उपविष्ट उपविष्ट, बाहर से भी बैठे हैं अंदर से भी बैठे हुए हैं, भाव दोनों तरफ से नहीं है, तो ऐसे 4 भेद होते हैं। सकिमर्थ, इसकी क्या आवश्यकता है, तो आचार्य उत्तर देते हैं निस्संगत्व निर्भयत्व जीविताशा विदासाद्यर्थ, परिग्रह छोड़ने के लिए, भय छोड़ने के लिए और जीने की अभिलाषा तक छोड़ने के लिए ये तप अपेक्षित है। इसके उपरांत ध्यान नाम का जो अंतिम तप है, जो अंतिम ही होता है, अंत में होता है और काम पूरा हो जाता है उससे। उत्तम संघनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात, आंग उपसर्ग के साथ पंचमी का प्रयोग होता है, आ अंतर मुहूर्तात, आंतर मुहूर्तात, उत्तम संगनन वाले जो मुनि हैं उनका एकाग्र चिंता निरोध, एक अग्र पर चिंता यानी मन उसका निरोध हो जाना, रुक जाना, एक बिंदु पर मन का रुक जाना वह ध्यान होता है। और उसका काल कितना है? आ अंतर्मुहूर्तात्, एक अंतर्मुहूर्त तक का उसका काल है। अब उत्तम संगनन कौन से हैं? तो बोले तीन है, उत्तम संगनन तीन है। पहला वज्र वृषभ नाराज संगनन, दूसरा वज्र नाराज संगनन, और तीसरा पड़क नाराज संगनन। ऐसे तीन संगनन वाले सातवें गुण स्थान को पार कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। बाकी नीचे के तीन संगनन वाले सातवें तक जा सकते हैं। ततः परम दुर्धरत्वाद एकाग्र चिंताया, उसके बाद मन का एकाग्र हो जाना तो मुश्किल हो जाता है, नहीं रह सकता उसके बाद। अंतर्मूर्त से अधिक मन एक जगह रहता नहीं। फिर बोले कि चिंता का रुक जाना का मतलब मन रुक गया, पर यह संभव नहीं है। मन कैसे रुक सकता है? मन रुक जाए तो फिर उसका अभाव हो जाए। तो आचार्य कहते हैं कि अनावश्यक विषयों में मन का रुकना अपेक्षित है यहां, लेकिन जो अपेक्षित विषय है, जो ध्यान में आवश्यक चिंतन के योग्य विषय है, उसमें आपत्ति नहीं। बोले परमेष्ठी का ध्यान करना हो तो करो, आत्मा का ध्यान करना हो तो करो, जो जो करने योग्य है उसका निषेध नहीं है। तो अभावस्य भावांतरत्वात् हेत्वंगत्वादि भी अभावस्य वस्तु धर्मत्व सिद्धेश्च। यदि चिंता के निरोध का नाम ध्यान है और निरोध अभाव स्वरूप होता है, तो वह गधे के सींग के समान असत ठहरता है। यानी जैसे गधे में सींग नहीं होता, वैसे ही यहां पर मन का अभाव कर दिया तो ध्यान नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर देते हैं, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि अन्य चिंता की निवृत्ति की अपेक्षा असत कहा जाता है। अपने विषय में प्रवृत्ति होने के कारण वह सत, क्योंकि अभाव भावांतर स्वभाव होता है और अभाव वस्तु का धर्म है। यह बात सपक्ष सत्व विपक्ष व्यावृत्ति इत्यादि हेतु के अंग आदि के द्वारा सिद्ध होती है, न्याय का विषय हो जाता है। अथवा निरोधनम निरोध, इस प्रकार भाव साधन नहीं है। निरोध शब्द भाव साधन नहीं है तो क्या है? बोले निरोध निरुद्धते निरोध, जो रोका जाता है इस प्रकार कर्म साधन है। तो चिंता का जो निरोध वह चिंता निरोध है। आशय यह है कि निश्चल अग्नि शिखा के समान निश्चल रूप से अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है, ज्ञान की स्थिरता ही ध्यान है। तद्भेद प्रदर्शनार्थमाह, उसके भेद प्रदर्शित करने के लिए आचार्य कहते हैं कि ध्यान चार प्रकार का है, आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ऐसे चार भेद ध्यान के होते हैं। ऋतं दुखम, ऋत का अर्थ दुख होता है। अर्दनम अर्तिर्वा, दुख कह लो, अर्दन कह लो, अर्ती कह लो, वो सब दुख का वाचक है। ऋत तत्र भवम आर्तम, उसमें दुख में होने वाला जो ध्यान होता है वह आर्त ध्यान है। जब भी कोई दुख होगा और आप ध्यान करोगे, दुखी होगे, वो आर्त ध्यान है। रुद्र क्रूराशय, रुद्र का अर्थ क्रूर अभिप्राय। तस्य कर्म तत्र भवम वा रौद्रम, उस क्रूर अभिप्राय का जो कार्य है वो, अथवा क्रूर अभिप्राय के होने पर जो होता है वह रौद्र ध्यान है। धर्म व्याख्या था, धर्म की व्याख्या की जा चुकी है धर्मानुप्रेक्षा में। धर्माद अनपेतम धर्म्यम, धर्म से जो अनपेत अर्थात अरहित अरहित हो, रहित न हो, यानी धर्म सहित हो, उसको धर्म्य कहते हैं। म्य धर्म्यो, शुचि गुण योगात शुक्लम, और शुचि गुण के योग से अर्थात पवित्रता के संयोग से शुक्ल ध्यान होता है। तदैत चतुर्विध ध्यानम द्वैविध्यम अश्नुते, वह चारों प्रकार का ध्यान दो भेदों को प्राप्त हो जाता है, प्रशस्ता प्रशस्त भेदात, प्रशस्त और अप्रशस्त की अपेक्षा से। अप्रशस्तम अपुण्याश्रव कारणत्वात्, अप्रशस्त जो ध्यान होते हैं, अच्छा ये चार प्रकार का जो ध्यान है वो दो भागों में विभाजित किया है, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो उसमें आर्त और रौद्र ध्यान जो है वो अप्रशस्त है, अपुण्य का कारण है, अपुण्य माने पाप, और कर्म दहन निर्दहन सामर्थ्य अप्रशस्तम, और जो कर्मों को जलाने में समर्थ होते हैं वो प्रशस्त ध्यान है। वो कौन से हैं? किम पुनस्तत इति चेद उच्यते, तो वो कौन सा ध्यान है जो कर्मों को जला सकता है? तो क्या कहा जाता है, परे मोक्ष हेतु, दो जो है आखिरी के वो मोक्ष के कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब एक एक ध्यान का वर्णन है। आर्त म मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार, अमनोज्ञ का संप्रयोग यानी संयोग होने पर आर्त ध्यान होता है, किमात्मक होता है? तो बोले तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार, कुछ भी कर रहे हो आप लेकिन जो वो अनिष्ट का संयोग हुआ है उसके वियोग के लिए स्मृति का समन्वाहार हो रहा है, अर्थात बार बार आपकी स्मृति वहीं जा रही है कि वो कब दूर होगा कब दूर होगा। वो अर्थ ध्यान है, ये पहला अर्थ ध्यान है, अनिष्ट संयोग, इसको संयोगज भी कहते हैं। दूसरा विपरीतम मनोज्ञस्य, मनोज्ञ का वियोग होने पर जो बार बार याद आती है और पीड़ा होती है वो दूसरा अर्थ ध्यान है, इष्ट वियोग, संयोगज एक दूसरा वियोगज। वेदनायाश्च फिर वेदना के कारण जो स्मृति समन्वाहार होता है, बार बार लगता है कि अपनी जो वेदना रहित अवस्था बार बार याद आती है तो वेदना चली जाए चली जाए चली जाए, ये तीसरा अर्थ ध्यान है। इसका संबंध प्राय शरीर से रहता है, वातादिक विकारों से उत्पन्न होने वाली वेदनाएं होती है, रोग आदि से, तो इसको रोगज कहते हैं। फिर अंतिम अर्थ ध्यान है, तुरीय अर्थस्य लक्षण निर्देशार्थमः, चौथे अर्थ ध्यान के लक्षण का निर्देश करने के लिए आचार्य कहते हैं निदानम च, निदान भी अर्थ ध्यान है, आगामी काल में भोगों की अभिलाषा रखना, तो उन आगामी कालीन भोगों को लेकर आज वो दुखी हो रहे हैं तो वो निदान नाम का अर्थ ध्यान है, इसको भोगज कहते हैं। योगज वियोगज रोगज भोगज, ऐसे ये ऐसे शब्द हैं कि आप याद कर सकते हैं एक व्याख्यान में सुन करके। फिर उसका अर्थ और उसकी व्याख्या आप जो अभी सुन रहे हो उसको जोड़ लेना, योगज में क्या जुड़ेगा, अनिष्ट संयोग, वियोगज में क्या जुड़ेगा, इष्ट वियोग, और रोगज में तो स्पष्ट है कि शरीर में कोई तकलीफ हो जाए, और अंतिम भोगज, भोगों की कामना करते हैं तो दुखी होते हैं, कामना अप्राप्त की तो होती है ना। तदेत चतुर्विधमार्थम किन स्वामिकम इति चेत उच्यते, ये चार प्रकार का अर्थ ध्यान जो है वो इसके स्वामी कौन है, कौन से स्वामियों वाला है यह अर्थ ध्यान, माने यह अर्थ ध्यान कहाँ कहाँ तक के हो सकता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम, ये अविरत को होता है, देश विरत को होता है और प्रमत्त संयत को भी होता है। अविरत कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार गुण स्थान अविरत है। फिर पंचम गुण स्थान देश विरत है और छठा गुण स्थान प्रमत्त विरत है। इन तीनों को होता है। मैंने पहले से छठे गुण स्थान तक की आरती ध्यान होता है, बस इतना है कि प्रमत्त संहिता नान्तु निदान वर्जमार्थ त्रयम्। प्रमादोदयोद्रेकात् कदाचित स्यात्। प्रमत्त संयत जो छठे गुणस्थान वर्ती मुनि हैं, उनको निदान छोड़कर बाकी तीन आर्त ध्यान होंगे। भोगों की अभिलाषा उनको नहीं हो सकती है। भावलिंगी मुनि भोगों की आशा से रहित होते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके, और बाकी कैसे होते हैं उनको? तो उत्तर दिया कि प्रमादोदय उद्रेकात्, प्रमाद के उदय के उद्रेक से, तीव्रता से। कदाचित स्यात् लेकिन कभी कभी होता है आर्त ध्यान, हमेशा नहीं होता है। व्याख्यातमार्तम संज्ञादि भी, अर्थ का व्याख्यान हो चुका है नाम वगैरह लेकर के। अब द्वितीय से दूसरा जो ध्यान है वो रौद्र ध्यान है। संज्ञा हेतु स्वामी निर्धारणार्थमाह, उसके नाम क्या है, उसके हेतु क्या क्या है, उसके स्वामी कौन है, ये निश्चित करने के लिए सूत्र कहते हैं। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरत यो। ये पंचमी के बहुवचन का प्रयोग है और वो सप्तमी के द्विवचन का। दो विभक्तियां हैं सूत्र में। तो हिंसा, अनृत यानी असत्य, स्तेय यानी चोरी, और विषय संरक्षण यानी परिग्रहों की रक्षा, इनसे रौद्रम रौद्र ध्यान उत्पन्न होता है, यानी अंदर एक क्रूरता से आती है। हिंसा करते समय भी क्रूरता आएगी, झूठ बोलते समय भी क्रूरता आएगी, चोरी करते समय भी क्रूरता आएगी, और विषय संरक्षण यानी परिग्रह के समय भी क्रूरता आएगी। तो ये रौद्र ध्यान है। किनको होता है? अविरत देश विरत यो हो, जो अविरत है, निचले चार गुणस्थान वाले अविरत है, और देश विरत यानी पंचम गुणस्थान, इनमें ये बात बनती है। फिर प्रश्न किया कि अविरतस्य भवतु रौद्र ध्यानम्। अविरत जीवों के पास रौद्र ध्यान हो, हमें तकलीफ नहीं है, देश विरतस्य कथम, अनुव्रति को कैसे रौद्र ध्यान होगा? तो उत्तर देते हैं कि तस्यापि हिंसाद्यावेशात वित्तादि संरक्षण तंत्रत्वाच्च कदाचित भवितुम अर्हति। देश विरत जो जीव हैं उनको भी हिंसादिक का आवेश आ जाता है, सातवीं प्रतिमा तक के युद्ध करते हैं देश विरत, आरंभ त्याग में उसका त्याग होता है। तो हिंसादिकों का आवेश आ जाने से, आदि में फिर पूरे पांचों पाप, उनका आवेश आने से और वित्तादिक के संरक्षण की अधीनता होने से, यानी जब तक पैसे हैं अनुव्रतियों के पास तब तक पैसों को लेकर के भी रौद्र ध्यान हो सकता है। पैसों की रक्षा को लेकर के होता ही है। कितना रौद्र ध्यान होता है, अर्थ रौद्र ध्यान भयंकर होता है इन कारणों से। कदाचित भवितुम अर्हति, लेकिन अनुव्रति है तो कभी होगा, हमेशा नहीं होगा। तत्पुनर नारकादि नाम अकारणम, लेकिन वो जो रौद्र ध्यान होगा अनुव्रति को, वो नारक आदि जो दुर्गतियां हैं उनका कारण नहीं होगा। नारक आदि जो पर्याय हैं उनका कारण नहीं होगा। क्यों? सम्यक दर्शन सामर्थ्यात्। क्या सुंदर जवाब है कि सम्यक दर्शन में इतनी सामर्थ्य है कि वो उसको दुर्गति में नहीं जाने देगा। रौद्रदान भले कर ले पर उसमें उतनी ताकत ही नहीं आने देगा वो सम्यक दर्शन कि उस रौद्रध्यान से दुर्गति जा सके। संयतस्य तु न भवत्येव, फिर जोर देकर के कह रहे हैं कि संयत अवस्था में हो ही नहीं सकता रौद्रध्यान, हो ही नहीं सकता तदारंभे, क्योंकि उस रौद्रध्यान अगर प्रारंभ हो गया तो उसके प्रारंभ होने पर संयम प्रच्युते है, संयम से नीचे गिर जाएंगे, तत्काल संयम नष्ट हो जाएगा। ये रौद्र ध्यान का उदय, संयम का क्षय, एक साथ रह ही नहीं सकते रौद्र ध्यान और संयम, ये बात है। ये ध्यान अगर समझ में आ जाए और प्रयोग में आ जाए तो जीव का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, क्योंकि ध्यान अंतिम है। समण सुत्तम में लिखा है कि जैसे शरीर में सिर होता है, जैसे वृक्षों में जड़ होती है, और जैसे व्रतों में अहिंसा होती है, ये सबसे मुख्य होते हैं। ये अपने शरीर में सिर सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए प्राणदंड में शिरश्छेद करते हैं, और व्रतों में अहिंसा सबसे मुख्य है। अहिंसा पाल लो, बाकी सारे व्रत पलते हैं साथ में। और वृक्ष में जड़ मुख्य है, जड़ ना हो तो वृक्ष नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार तपश्चरण में ध्यान मुख्य है। ध्यान करने वाला कर्मोदय में दुर्बल नहीं पड़ता है, सबसे बड़ा लाभ ये है। इसीलिए कदाचित भवति लिखा है इसमें, अणुव्रती को ये जो रौद्र ध्यान है वो कभी हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। और कैसे होगा, किस कारण होगा, तो वो बता दिया उन्होंने, पैसों के कारण होगा, या फिर एक चीज और बताई थी, हिंसा अधिक के आवेश के कारण होगा। भले वो हिंसा असंकल्पी हो, क्योंकि संकल्पी का तो त्याग है ना अणुव्रत में, असंकल्पी हिंसा, लेकिन उसके आवेश में, आवेश शब्द लिखा है देखो आप, हिंसा द्यावेशात, सर्वार्थ सिद्धि में नवम अध्याय के 35वें सूत्र की टीका में नीचे से तीसरी पंक्ति है, तस्यापि हिंसाद्यावेशात् वित्तादि संरक्षण तंत्रत्वाच्च कदाचित भवितुम अर्हति, कभी होने योग्य होता है पर दुर्गति का कारण नहीं होता। आहा, अब कोई कहता है परिमोक्ष हेतु उपदिष्टे, दो बाद वाले ध्यान मोक्ष के कारण है ऐसा आपने उपदेश किया है, तत्राद्यस्य मोक्ष हेतोर ध्यानस्य, तो उसमें से जो प्रथम मोक्ष में कारणभूत ध्यान है उसका भेद स्वरूप स्वामित्व निर्देश कर्तव्य, उस ध्यान के भेद, उस ध्यान का स्वरूप, उस ध्यान के स्वामियों का निर्देश करने योग्य है इति अतः आह, इसलिए यहां से आचार्य सूत्र कह रहे हैं। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्। आज्ञा का विचार करने के लिए, अपाय का विचार करने के लिए, विपाक का विचार करने के लिए और संस्थान का विचार करने के लिए धर्म ध्यान अपेक्षित होता है, धर्म ध्यान आवश्यक होता है, अथवा इनके लिए मन को एकाग्र करना धर्म ध्यान है। विचयनम विचयो विवेको विचारणा इत्यर्थ, इसकी व्याख्या अपन आगामी सत्र में देखते हैं, आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम।